हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अच्छा, अगर वो तुम्हारा बेटा है तो बाप कौन है उसका? मृणाल से क्या रिश्ता है तुम्हारा? अज्यूम कर लीजिए, इसमें तो आप माहिर हैं, और इतने नादान या बेवकूफ भी नहीं कि मृणाल को मेरे साथ देखकर भी हमारे रिश्ते का अंदाजा ना लगा सके। मुझे साफ साफ शब्दों में जवाब चाहिए धृति, क्या रिश्ता है तुम्हारा मृणाल से? अर्णव का जब्त जवाब देने लगा था और चेहरे पर गुस्सा उभर आया था, पर धृति जरा भी ना घबराई और निगाहों से निगाहें मिलाते हुए जवाब दिया, वही रिश्ता है जो आपके और मेरे बीच होकर भी नहीं था। कुश के डैड के बारे में जानना था ना आपको, तो मैं आपकी ये जिज्ञासा भी शांत कर देती हूँ। कुश के डैड मृणाल हैं और मैं उसकी मम्मा। शायद अब आपको मेरे और मृणाल के रिश्ते और उस रिश्ते की गहराई को समझने में आसानी होगी। धृति का जवाब अर्णव के लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसे अपनी आंखों देखे और कानों सुने पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके दिल ने इस बात को मानने से साफ इनकार कर दिया। पल भर वो शॉक्ड सा धृति को देखता रहा, जैसे उसकी आंखों में सच्चाई तलाशने की कोशिश कर रहा था। फिर बेयकीनी से उसे देखते हुए उसने सिरे से उसकी बात को नकार दिया। नहीं, तुम मुझे भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकती। क्यों नहीं बढ़ सकती? मैं आगे बढ़ गई हूँ और अपने परिवार के साथ बहुत खुश हूँ। तुमने वादा किया था कि तुम इंतजार करोगी मेरा। अर्णव की हिम्मत जैसे टूटने लगी थी और लहजा कमजोर होने लगा था, पर धृति सख्ती से अपनी बात पर अड़ी हुई थी। मैंने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, पर मैंने कहा था अगर हम दोबारा मिलें तो तुम मुझसे दूर नहीं जा पाओगी, तुम्हें मुझे एक और मौका देना होगा। हाँ, कहा था, पर मैं आपको दूसरा मौका नहीं देना चाहती। आप माने या ना माने, पर मैं आपसे बहुत दूर आ चुकी हो, अब हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। धृति, शायद तुम भूल रही हो कि हमारा डिवोर्स नहीं हुआ था। तुम आज भी दुनिया के लिए मेरी पत्नी हो, फिर तुम दूसरी शादी कैसे कर सकते हो? वो रिश्ता सालों पहले दम तोड़ चुका है। आप जबरदस्ती उस रिश्ते की लाश को ढो रहे हैं। मैं कब की आपको और उस रिश्ते को छोड़कर अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि आप मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी ना करें। धृति ने सख्ती अपनाते हुए उसे चेतावनी दी। पल भर में अर्णव के रुख के रंग बदले थे और बेजार गमगीन लहजा मोहब्बत से सराबोर हो गया था। ये तो अब मुमकिन नहीं स्वीटहार्ट, क्योंकि मुझे तुम्हारे इस झूठ पर भरोसा नहीं हुआ। तुम बीवी हो मेरी और मुझे पूरा विश्वास है तुम पर, तुम मेरे अलावा किसी की हो ही नहीं सकती। अर्णव का बदला लहजा धृति को चौंका गया। पल भर को वो फटी आंखों से हैरत से उसे तकती रही, फिर तिड़कते हुए जवाब दिया, मैं आपकी कभी नहीं थी और अब मेरी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं है। मैं आपको बहुत पीछे छोड़ आई हूँ और अब मुझ पर किसी और का हक है, जिसकी निशानी से आप पहले ही मिल चुके हैं। झूठ बोल रही हो तुम, ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ तुम्हें, तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती। अर्णव ने पूरे विश्वास के साथ उसकी बात को मानने से सिरे से नकार दिया। अर्णव का ये दृढ़ विश्वास देखकर धृति हैरान थी, पर कुछ पुरानी बातें भी उस पर हावी होने लगी थीं। चेहरे के भाव कुछ बदले थे और लहजे में कड़वाहट घुलने लगी थी। हाँ, वाकई आप तो बहुत अच्छे से जानते थे मुझे, आपसे बेहतर तो मैं कभी खुद को भी नहीं जान सकी। पर मिस्टर अर्णव सिंह रायजादा, वक्त और हालातों के साथ इंसान भी बदलता है, मैं भी बहुत बदल गई हूँ। धृति ने व्यंग्य भरे अंदाज में उस पर तंज कसा था, जैसे कुछ जताने की कोशिश कर रही थी। अर्णव उसकी बातों का मतलब समझते हुए हौले से मुस्कुरा दिया, वो तो देख ही रहा है मुझे। गुड, तो बताइए कब वापस जाने का इरादा है आपका? तुम्हें लिए बिना तो अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। फिर से आप जबरदस्ती करेंगे मेरे साथ? इस बार तुम खुद आओगी मेरे पास। खुशफहमी है आपकी, पर ऐसा कभी नहीं होगा, तो खुद को झूठी उम्मीदें ना दें। जब उम्मीदें टूटती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। धृति के रुख पर दर्द उभरा था और जैसे वो अर्णव को उस दर्द से बचाने की कोशिश कर रही थी, इसलिए पहले ही उसे आगाह करना चाह रही थी। तुम्हारे लिए हर दर्द, हर तकलीफ, हर जिल्लत, हर रुसवाई कबूल है मुझे। अर्णव ने जज्बे छलकाती निगाहों से उसे देखते हुए संजीदगी से जवाब दिया और उठकर खड़ा हो गया। धृति आंखों की पुतलियां फैलाए चकित सी उसे तकती ही रह गई। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि पति पत्नी अलग अलग घरों में नहीं रहा करते, और जब उनके दरमियान इतनी दूरियां हों तो बच्चा वजूद में नहीं आ सकता, इसलिए तुम्हारा सफेद झूठ पकड़ गया। मृणाल से तुम्हारा वैसा कोई रिश्ता नहीं, ये तो मैं जान गया हूँ। उस बच्चे की सारी सच्चाई भी जल्दी ही पता लगवा लूंगा, और अब वापस तो तुम्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा, इसलिए खुद को तैयार कर लो, क्योंकि आज यहाँ से जा रहा हूँ, पर अब तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाने वाला, और जितनी जल्दी तुम इस हकीकत को स्वीकार कर लोगी उतना ही अच्छा होगा तुम्हारे लिए। चलता हूँ, जल्दी ही फिर से मुलाकात होगी। अर्णव ने आंखों में शरारत भरते हुए बाईं आंख दबाई और कुटिलता से मुस्कुराते हुए वहाँ से चला गया, और धृति शॉक्ड सी बुत बनी खड़ी बस उसे देखती ही रह गई। कितनी कोशिश की थी उसने अपनी कहानी पर विश्वास दिलाने की, पर अर्णव ने एक पल में पूरी बाजी ही पलट दी थी और धृति को मुसीबतों से घेरा छोड़कर वहाँ से जा चुका था। अर्णव के दिमाग में आगे की प्लानिंग चलने लगी थी, जबकि धृति को उसने चारों खाने चित करके छोड़ दिया था और वो बेहद मजबूर और लाचार महसूस कर रही थी। पूरे दिन वो उलझी उलझी और खोई खोई सी रही। मन बहलाने की कोशिश तो बहुत की, पर अर्णव उसके दिलों दिमाग पर हावी होने में कामयाब रहा था। कहीं मन ही नहीं लग रहा था। रह रहकर अर्णव की बातें याद आती और दिल बेचैनी से पहलू बदलने लगता। खैर, जैसे तैसे पूरा दिन बीता था। रात को बेमन से खाना खाकर कमरे में जाकर लेट गई थी। नींद तो आनी थी नहीं, तो बस बेचैनी से करवट बदलती रही। धृति, तुम कुछ तो बताओ यार, आखिर तुम्हें हुआ क्या है? मैं 3 दिन से देख रही हूँ तुम्हें, कुछ खोई खोई सी, परेशान और उदास सी रहती हो। न ठीक से खाती पीती हो, न सोती हो, अपना ख्याल तक नहीं रखती, कुश के साथ भी वक्त नहीं बिताती। तुम्हारी मुस्कान देखे तो जैसे सदियां बीत गई हैं। न कुछ बोलती हो, न बताती हो, खुद को इस घर की चारदीवारी में बंद कर लिया है तुमने। कारखाने तक नहीं जा रही और अब डिनर पर जाने से भी मना कर रही हो। ये माधुरी थी। अर्णव से हुई उस मुलाकात को 2 दिन बीत गए थे और तभी से धृति कुछ अनमनी सी रहती थी। माधुरी उसके व्यवहार में आए बदलावों को महसूस तो कर रही थी, कई बार उससे वजह जानने की कोशिश भी की, पर धृति या तो चुप्पी साध जाती या फिर बात टाल जाती। उसने खुद को इस चार दीवारी में कैद कर लिया था और हर पल एक डर के साए में जी रही थी कि कहीं अर्णव फिर से न आ जाए। बाहर भी इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उसका सामना करने को तैयार नहीं थी वो। आज मृणाल उन्हें डिनर पर बाहर लेकर जाने वाला था, पर धृति ने कहीं भी बाहर जाने से साफ इनकार कर दिया। बस उसी बात पर माधुरी धृति पर भड़क उठी। धृति के पास माधुरी के सवालों के जवाब तो थे, पर वो शायद इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने अपनी परेशानी और उदासी को छुपाते हुए खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ है मुझे, तुम बेवजह ही इतना परेशान हो रही हो। बताया तो था तुम्हें कि बस तबीयत कुछ ठीक नहीं, मूड स्विंग्स हो जाते हैं, कुछ करने का, कहीं जाने का, किसी से बात करने का मन नहीं होता। 1-2 दिन में वापस नॉर्मल हो जाऊंगी और चल रही हूँ मैं डिनर पे।
धृति ने माधुरी के सवालों को यहीं खत्म करने और बात को टालने के लिए डिनर पर जाने के लिए भी हामी भर दी, पर माधुरी को कुछ गड़बड़ होने का शक हो चुका था। कुछ पल वो गहरी निगाहों से धृति को देखती रही, फिर उसे तैयार होने को बोलकर बाहर निकल गई। धृति, क्या खाओगी तुम? मृणाल ने मेन्यू धृति की ओर बढ़ाते हुए सवाल किया। इस वक्त वो तीनों कुश के साथ रेस्टोरेंट में बैठे थे। उस रेस्टोरेंट में एक तरफ स्टेज बना था जहां मध्यम रोशनी के बीच कोई गिटारिस्ट बैठा गिटार की धुन छेड़ रहा था और उसकी मध्यम सॉफ्ट सी आवाज वहां खुशनुमा माहौल बना रही थी, जिसके बीच वहां आए गेस्ट डिनर एंजॉय कर रहे थे। धृति तो जैसे यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। उसका माइंड एक्स्ट्रा अलर्ट मोड पर था और बेचैन निगाहें चहुं और भटकते हुए जैसे किसी को तलाश रही थी। मृणाल की आवाज़ सुनकर उसने चौंकते हुए उसे देखा, फिर हड़बड़ी में सर हिला दिया। तुम्हारा जो मन हो मंगवा लो, मैं कुछ भी खा लूँगी। माधुरी जो बड़े ही ध्यान से धृति को ऑब्जर्व कर रही थी, उसकी भौहें सिकुड़कर आपस में जुड़ गईं। कुछ तो गड़बड़ थी, और क्या, ये अब उसे पता लगाना था, क्योंकि धृति का ये व्यवहार नॉर्मल नहीं था। मृणाल ने सर हिलाया और सबके पसंद के हिसाब से ऑर्डर दे दिया। कुछ ही देर में उनका ऑर्डर उनके टेबल पर सज चुका था। कुश की जिद पर धृति उसे खिला रही थी, साथ ही बीच बीच में खुद भी खा रही थी और कुश की कभी न खत्म होने वाली बातों का जवाब भी दे रही थी। कुछ पल के लिए उसके दिलो दिमाग से अर्णव का ख्याल निकल गया था, तभी तो बेफिक्री से मुस्कुरा रही थी। मृणाल और माधुरी भी दोनों को देखकर मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बातें करते हुए डिनर एंजॉय कर रहे थे। अचानक ही बैकग्राउंड में बजता गाना बंद हो गया। कुछ सेकंड बाद गिटार की धुन फिर छिड़ी थी और एक जानी पहचानी सी धीमी आवाज वहां गूंज उठी थी। ना मारेगी दीवानगी मेरी, ना मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। टू बी कंटिन्यूड।